తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. तो हम पिछले हफ्ते जो राम कथा कर रहे थे उसको आज चालू रखेंगे. तो यहाँ पे जो श्लोक है उसका मैं पहले अर्थ बोलता हूँ और उसके बाद में हम इसको दोहराएंगे. अवनी तनया कमनीय करम. अवनी मतलब पृथ्वी, तनया मतलब उनकी पुत्री सीता देवी जो थी वो पृथ्वी से उनके आविर्भाव हुआ था. कमनीय करम तो उन्होंने कमनीय मतलब इच्छा की, कामना की कि मुझे ये इनका हाथ मिल जाए. जिन्होंने पृथ्वी से जन्म लिया उन्होंने जिनका हाथ चाहा, जिनको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहा. रजनी कर चारु मुखाम्बुरुहम. रजनी कर जो हाथ चाहा वो बड़ा सुंदर था, रजनी के समान. चारु मुखाम्बुरुहम तो चारु मतलब बड़ा मधुर मुख अम्बुरु तो उनका जो चेहरा था कमल के समान था और बड़ा मधुर था. तो रजनी ये शब्द दो बार यहाँ पे आया है. यहाँ पे शब्दों का जो बड़ा मधुर खेल है, रजनी कर और रजनी चर. तो रजनी कर मतलब अर्थ है जो कमल है रात को उगता है उसको रजनी कर कहते हैं. और रजनी चर, चर मतलब चलना, जो रात को चलते हैं, जो राक्षस होते हैं उनको निशाचर कहते हैं. तो रजनी चर राज, तो ऐसे जो रात को चलने वाले राक्षस होते थे उनमें जो राजा था तमो, जो सबसे अधिक तमोगुण में था, मिहिरम. तो मिहिर मतलब उनका अंत किया उन्होंने. रजनी चर राज तमो मिहिरम. और ये जो व्यक्ति है महनीयम अहम. महनीयम मतलब ये बड़े महान है, उनकी महिमा बड़ी विशाल है. महनीयम अहम रघुराम मये. वो कौन है? वो रघुकुल में जन्मे हुए राम है. अए ये अए ऐसे संबोधनात्मक शब्द है जो शरणागति व्यक्त करता है. तो हम ये श्लोक दोहराएंगे. अवनी तनया कमनीय करम. तनया कमनीय करम. अवनी तनया कमनीय करम. तनया कमनीय करम. अवनी तनया कमनीय करम. तनया कमनीय करम. रजनी कर चारु मुखाम्बुरुहम. चारु मुखाम्बुरुहम. रजनी कर चारु मुखाम्बुरुहम. चारु मुखाम्बुरुहम. रजनी कर चारु मुखाम्बुरुहम. चारु मुखाम्बुरुहम. रजनी चर राज तमो मिहिरम. राज तमो मिहिरम. रजनी चर राज तमो मिहिरम. राज तमो मिहिरम. रजनी चर राज तमो मिहिरम. चर राज तमो मिहिरम. महनीयमहं रघुराममये. महं रघुराममये. महनीयमहं रघुराममये. महनीयमहं रघुराममये महनीयमहं रघुराममये महनीयमहं रघुराममये अवनीतनया कमनीयकरम् रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचर राज तमो मिहिरम् महनीयमहं रघुराममये अवनीतनया कमनीयकरम् रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचर राज तमो मिहिरम् महनीयमहं रघुराममये अवनीतनया कमनीयकरम् रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचर राज तमो मिहिरम् महनीयमहं रघुराममये अवनीतनया कमनीयकरम् रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचर राज तमो मिहिरम् महनीयमहं रघुराममये अवनीतनया कमनीयकरम् रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचर राज तमो मिहिरम् महनीयमहं रघुराममये वैष्णवीस् अवनीतनया कमनीयकरम् रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचर राज तमो मिहिरम् महनीयमहं रघुराममये अवनीतनया कमनीयकरम् रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् रजनीचर राज तमो मिहिरम् महनीयमहं रघुराममये हरे कृष्ण। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की कैसे कैकेयी के षड्यंत्र के प्रभाव के कारण दशरथ महाराज ने ऋषि रामचंद्र को वनवास भेजने का जाने का आदेश दिया, और जब वे उधर चले गए जा रहे थे तो किस प्रकार से जो भावनाओं का कर्षण घर्षण जो हुआ था लक्ष्मण के हृदय में, कौशल्या के हृदय में, सीता के हृदय में, और फिर उसके बाद में अंत में जब वो निकल पड़े सुमंत्र अपने रथ पर लेके जा रहे थे सब राम लक्ष्मण सीता को, दशरथ महाराज दौड़ते हुए जा रहे थे। दशरथ महाराज वृद्ध थे और बड़े दुखी थे, वृद्धता से अधिक जो दुख था उद्विग्नता के कारण उनका वो फिसल गए और गिर गए और गिर के वहीं पे बेहोश हो गए। और ऋषि रामचंद्र का जो हृदय था उस समय उनको एक तरह से इच्छा होती जाके देखे कुछ उनका कुछ हुआ नहीं है, पर दूसरी ओर सोचा था जितना ज़्यादा समय तक मैं यहाँ पर रहूँगा उतना उनका दुख बढ़ेगा। और फिर वो आगे चलते जा रहे थे तो अनेक अयोध्यावासी उनके साथ ही चल रहे थे, और अयोध्यावासी बार बार बोलने पर भी रुकने को तैयार नहीं थे, लौटने को तैयार नहीं थे। और फिर जो इस तरह चल रहे थे, कई उसमें वृद्ध लोग थे, युवा लोग थे, वो सब वृद्ध ब्राह्मण चल रहे थे और वो सुमंत्र को बोल रहे थे आप इतना तेजी से मत जाओ। तो सुमंत्र सुन नहीं रहे थे, तो फिर वो देखा उन्होंने वो घोड़ों को बोलने लगे, हे घोड़े तुम्हारे कान इतने बड़े हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारे प्रभु को इतने तेजी से क्यों ले जा रहे हो, रुक जाओ आप। और फिर तभी श्री रामचंद्र ने देखा कि ये सब ब्राह्मण लोग हैं, वो मेरे पीछे आ रहे हैं, इस तरह से उनको पीड़ित कर रहा हूं मैं, तो वे उतर गए अपने रथ से और सब साथ में चलने लग गए। और शाम को वो नदी के तट में पहुंच गए, शिरयू नदी जो थी अयोध्या के बाहर, और उनकी योजना थी कि वो नदी के पार जाए और वहां पे भरद्वाज मुनि का आश्रम था, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके फिर वो आगे वन में जाने का उनका योजना था। और फिर जो सब अयोध्यावासी उनके साथ ही आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रेम जो मेरे प्रति है उसके बारे में कोई संदेह नहीं है, आपका प्रेम बड़ा गाढ़ा है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो प्रेम आपने मुझ पर दिखाया है वही कृपया आप मेरे पिताजी के भी दिखाइए। जो दशरथ महाराज है वही हम सबके स्वामी है, वही हमारे सबके रक्षण करता है, और आपका ये कर्तव्य है कि आप उनके आदेश पालन करो और उनको राज्य में मदद करो। तो जो अयोध्यावासी जितने प्रभु श्री रामचंद्र अपने सद्गुण दिखा रहे थे, वो ऐसे नहीं कर रहे थे कि आप सब मेरे पक्ष में हो तो हमारा एक पक्ष होगा, दूसरा एक पक्ष दशरथ महाराज का होगा, हम उनको उनके खिलाफ पुकार कर देंगे, बंद उठाएंगे, ऐसे कुछ। और वो अपने सद्गुण दिखा रहे थे, पूरी तरह से त्याग का भावना है उनमें, कुछ भी इच्छा नहीं है कि अपने जो राजा है उनके इच्छा के खिलाफ जाए। तो जितने प्रभु श्री रामचंद्र सद्गुण दिखा रहे थे उतने ही सब लोग उनके ओर आकर्षित हो रहे थे। तो श्री जीव गोस्वामी पाद है, वे एक बड़ा सुंदर ग्रंथ सुंदर वर्णन करते हैं गोपाल चंपू में, कि जब नंद महाराज और ये पांच भाई होते हैं, नंद उपानंद सुनंद, ये सब पांच भाई होते हैं, अभिनंद और नंदन, तो उनमें से सुनंद जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं। और जब पर्जन्य राजा जो होते हैं, जो वृंदावन के इलाके के राजा होते हैं, वे जब वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहते हैं, साधारणतया जो वैश्य परिवार के लोग होते हैं वानप्रस्थ स्वीकार नहीं करते हैं, पर पर्जन्य महाराज की इच्छा थी कि वो अपने मन एकाग्रता से भगवान की भक्ति में लगा दें, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं राज्य की जिम्मेदारी है वो मैं मेरे सबसे बड़ा पुत्र है उसको उसको मैं दे दूंगा। तो तभी बड़ा उत्सव हुआ, और तभी जो मथुरा से वसुदेव आए थे, अनेक बड़े बड़े हस्तियां वहां पे आई थी, और उन्होंने अपना जो मुकुट था सुनंद को दिया, और सुनंद ने वो स्वीकार किया पर अपने सिर पे स्वीकार नहीं किया, अपने हाथ में स्वीकार किया। और फिर उन्होंने नंद महाराज को बुलाया, वो तभी महाराज नहीं थे, वो युवक थे तभी, और उन्होंने जो मुकुट था उनके सिर में रख दिया, और सब आश्चर्यचकित हो गए। और जो नंद थे बोले, हे भ्राता आपने क्या किया है, ये आप सबसे वरिष्ठ हो, आपका राजा बनना चाहिए। तो तभी जो सुनंद बोलते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जो कोई भी राजा या नेता बनना चाहता है तो वे क्या बोलते हैं कि अगर किसी को राजा बनना है तो उसे अपने जो अधीन लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना होगा, जिससे कि वो उन पे प्रभाव कर सके। राजा कभी जोर जबरदस्ती से राज ज्यादा समय तक नहीं कर सकता, और अगर किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है तो वो आकर्षित कैसे होते हैं लोग, बर्ताव से होते हैं, और जो बर्ताव है वो अच्छा सदव्यवहार जो है वो अधिक काल तक तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि अंदर में सद्गुण नहीं है। अगर सद्गुण अंदर नहीं है तो बाहर रूप से कुछ समय तक मीठा मीठा बात कर सकते हैं, तो जब कोई समस्या आ जाती है तो फिर जो असली रंग दिख जाते हैं। तो इसीलिए वे कहते हैं कि सुनंद कहते हैं कि जो नंद है इनमें वास्तव में सद्गुण है, इसीलिए जो राज्य आपने मुझे दिया है मैं स्वीकार करता हूं, पर ये राज्य की जिम्मेदारी मैं नंद पे सौंपता हूं। तो वास्तव में तभी नंद महाराज कहते हैं कि आप राजा हो और आपका जो आदेश है मैं एक नागरिक के रूप में उसको उसको इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके आदेश पे अनुसार आपकी इच्छा से मैं राजा का पद स्वीकार करता हूँ। तो वास्तव में जो सद्गुण होते हैं, अगणित गुणगण भूषित राम अवनीत नया कामित राम, जो नाम रावण में कहते अगणित गुण भूषित राम, तो प्रभु श्री रामचंद्र एक भी बार कौशल्या को दोष नहीं देते, दशरथ महाराज को दोष नहीं देते हैं, और अपनी अप्रसन्नता भी व्यक्त नहीं करते हैं वो कि ऐसे कुछ हुआ है। वो क्या यही सोच रहे हैं कि जो भी हुआ है दैव नियति के अनुसार हुआ है, तो कम से कम दूसरों को परेशानी कैसे हो सकती है। और फिर जब ये देखते हैं कितना वैराग्य है, कितना दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है, तो सारे अयोध्या के वासी और आकर्षित हो जाते हैं। वो कहते हैं आप जो कह रहे हैं सत्य है, पर हम आपके बिना जी नहीं सकते। अगर आप जंगल में जाओगे तो हम भी आपके साथ जंगल में आएंगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र उनके प्रेम को देख कर विवश हो जाते हैं और फिर कुछ बोल नहीं पाते हैं। और फिर वो रात को वहीं पर विश्राम करते हैं। और रात को जब विश्राम कर रहे होते हैं तो प्रातः बहुत जल्दी 1-1.30 बजे जब होता है, तभी प्रभु श्री रामचंद्र उठ जाते हैं और लक्ष्मण को उठाते हैं और फिर वो सुमंत्र को उठाते हैं। बोलते हैं कि ये जो अयोध्यावासी है, ये कभी हमें छोड़ हमें जंगल में जाने नहीं देंगे, हमारे साथ आएंगे। और वास्तव में देखो आप, ये सब जमीन पे सो रहे हैं, रात को कितनी परेशानी में है। हम राजा है तो राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का संरक्षण करना चाहिए, प्रजा के दुखों को दूर करना चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे कारण इन सबको दुख हो रहा है, इतनी असुविधा हो रही है। रामचंद्र ये सोच रहे कि मुझे कितना दुख हो रहा है, वो भी उसी जमीन पे सो रहे थे जो वो सब सो रहे थे प्रजा भी, पर वो कह रहे हैं कि वास्तव में इनको कितना दुख हो रहा है। तो हम हमारे राजा का कर्तव्य उचित रूप से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि इनको दुख न पहुंचे तो अभी ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो फिर लक्ष्मण को बोलते हैं सुमंत्र को जाके उठाओ, और फिर वे सीता देवी को उठाते हैं और वो सुमंत्र से कहते हैं कि आप इस तरह से, वो नदी के तट पे होते हैं तो कभी नदी के अंदर आप रथ लो, कभी नदी के बाहर लो, फिर कभी गोल घुमाओ, कभी इस तरह से आप आपका रथ लेके जाओ कि जो रथ के चिन्ह है जमीन पे वो सब दिशा पे हो गए और कहाँ जाना है उनको समझेगा नहीं। तो इस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं गोपियों के बीच से, तो गोपियाँ भगवान के पथ चिन्हों से ढूंढ रहे हैं कि कहाँ भगवान जाते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र सोचते हैं कि पद चिन्हों से भी उनको पता नहीं चलना चाहिए, तो इसीलिए सुमंत्र बड़ी दक्षता से रथ चलाते हैं, राजा के सारथी है वास्तव में। तो काफी बार अंदर आके बाहर जाके, और फिर वो अंदर बाहर से बहुत बार करने के बाद तेजी से निकलते हैं और फिर नदी के पार चले जाते, नदी के पार जाने के लिए वो जगह ढूंढ रहे होते हैं। आगे चलते हुए वो जो वहां पे एक राजा होते हैं, निषाद राजा, उनका नाम होता है गुहा, वो गुहा के राज के में पहुंच जाते हैं। और जो गुहा है वो कई बार अयोध्या में आए होते हैं, जो वो निषाद राजा होते हैं और दशरथ महाराज एक तरह से शहनशाह जैसे होते हैं। तो जो राजा को कर देना होता है उसके लिए कई बार वो अयोध्या में आए थे, और तभी उनकी और प्रभु श्री रामचंद्र की बहुत अच्छी एक तरह से मैत्री हो गई थी। वे जानते थे कि ये राजा है और जानते थे कि ये हमारे प्रभु है, स्वामी है, भगवान है, पर भगवान श्री रामचंद्र उनको बड़े स्नेह से उनसे आदान प्रदान करते थे। जब ये गुहा को पता चला कि श्री रामचंद्र आ रहे हैं हमारे राज्य में, बड़े प्रसन्न हो गए वो। फिर वो इस तरह से जा रहे थे, जब वो जा रहे थे सब सुबह हो गई और जो अयोध्यावासी उठे और फिर उठ के देखे कहीं राम सीता लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहे, सुमंत्र नहीं है, रथ नहीं है, तो हाहाकार मच गया, सब जगह ढूंढने लग गए। और जहाँ भी देखे वहाँ पे उनको रथ को चिन्ह दिख रहे थे और वो गोल गोल घूम रहे थे। वो ढूंढते हुए बोले कि अभी हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हताश हो गए। और वो एक तरह से क्रोधित हो गए निद्रा देवी पर कि तुमने हमसे हमारे प्रभु को छीन लिया। और वो सोच रहे थे कि हमें निद्रा देवी को शाप देना चाहिए कि हमें प्रभु से हमें छीन लिया, हमें वास्तव में हम जप कर रहे होते, निद्रा देवी अगर हमें ले लेती है तो जो उठाता है हमको हम उनको शाप देना चाहते हैं। तो वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र को इस तरह से वो खो गए देखते हैं तो हताश हो जाते हैं। फिर कोई पर्याय नहीं सोचकर पुनः वो अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। तो जब अयोध्यावासी जाते हैं तो सिर्फ अयोध्यावासी में से पुरुष जाते हैं, तो स्त्रियां कोई उनके साथ नहीं जाती है। तो जब वो जब स्त्रियां देखती है कि उनके पति या उनके पिता या उनके पुत्र अकेले आए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र नहीं आए हैं, तो वो कहते हैं कि घर में वापस आने की आपको ज़रूरत क्या थी, कि हमें वास्तव में अयोध्या में रहने की ज़रूरत भी क्या है, अगर प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है तो वास्तव में यहाँ पर रहने का कोई कारण नहीं है हमें। और हर तरह से वो जो जीवन हो जाता है अयोध्या नगरी में बंद पड़ जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ करना छोड़ देते हैं, फिर जो बच्चे हैं वो खेलना छोड़ देते हैं, जो दुकानें हैं दुकानें में कोई काम नहीं हो रहा है, खेती नहीं चल रही होती है बाहर, तो पूरा अयोध्या जो है एक तरह से भूत नगरी जैसे बन जाती है। अयोध्या का वर्णन हम बाद में करेंगे जब भरत महाराज भरत जो है वे लौट के आते हैं। उस समय वो जो देखते हैं अयोध्या में क्या हो रहा है उससे वो समझ में आते हैं अयोध्या में कुछ भयंकर घटना हुई है। प्रभु श्री रामचंद्र जो गुहा है उसके राज्य में पहुंचते हैं। तो गुहा के राज्य में जब पहुंचते हैं तो नाविक धावित मृदुपद राम शालित निज मृदुपद राम मृदुपद मृदुपद मतलब उनका जो पैर होता है बहुत मृदु होता है, बहुत मधुर होता है। तो जब गुहा वहाँ पे पहुँच गुहा देखते हैं तो उनके स्वागत के लिए वो वहाँ पे आ जाते हैं। और जब वे देखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र को कि वे उन्होंने जो वनवास में रहने का वेश है वो पहना हुआ है, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। उनको पहले ही जानकारी मिल गई है क्या हुआ है, फिर वो प्रभु श्री रामचंद्र का स्वागत करते हैं। और वास्तव में दिन भर उनको चलना पड़ता है जिससे कि वे गुहा के राज्य में पहुंच जाते हैं, राजधानी में। जब वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो गुहा कहते हैं कि आप हमारे राज्य में रह जाओ, आप हमारे राज्य में रह जाओ और यहाँ पे रहकर आज की रात तो कम से कम आप बिताओ। और मेरी तो इच्छा है कि आपको वन में रहना है, मेरा राज्य वन में ही है, तो आप मेरे राज्य में ही रहो, हम आपकी सारी जो सुविधाएँ कर देंगे और हमको भी सेवा का मौका मिल जाए। तो भगवान बोलते हैं कि आप जो सेवा कर रहे हो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, पर जो आदेश है वन में रहने का मैं उसको टालना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं आज की रात आपके साथ रहूँगा और फिर बाद में मैं नदी के पार जाना चाहता हूँ। तो फिर इस तरह से योजना करते हैं। तो जो गुहा होता है बड़ा बहुत सा अनेक पकवान और स्वादिष्ट अन्न लेके आते हैं वो अपने सेवकों को बोले होते हैं। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र वो सब उनके सामने अन्न रखते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में मुझे भी वन में रहना है, तो फिर वन में जो अन्न मिलता है वही मैं खाऊंगा, पर आपने सब ये लाया है तो मैं इसको अस्वीकार भी नहीं करूंगा। तो इसीलिए जो महाराज दशरथ है उनके जो घोड़े हैं वो आपने जो दिया है वो राजा को स्वीकार करने के लिए आप उनको खिला दो। तो जो गुहा होता है वो कहते हैं कि वो बड़ा हताश हो जाता है, पर वो सोचते हैं कि यही अगर हम कर सकते हैं तो यही उचित है, इतना ही हम सेवा करेंगे। तो फिर उस दिन रात को प्रभु श्री रामचंद्र ज़मीन पे ही गुहा एक थोड़ा सा बिस्तर जैसे बना देते हैं और फिर उस पर घास और गवत जो होता है उससे बिस्तर बनाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र सीता वहाँ पे सो जाते हैं और फिर गुहा अपने अस्त्रों के साथ वहाँ पे संरक्षण कर रहा है। और वो कहते हैं लक्ष्मण को कि उन्होंने हमने आपके लिए भी एक छोटा सा बिस्तर बनाया, आप भी वहाँ पर सो जाओ। तो लक्ष्मण कहता है कि मैं सो नहीं सकता। तो वास्तव में आचार्यगण बताते हैं कि गुहा और लक्ष्मण ये दोनों प्रभु श्री रामचंद्र के भक्त हैं। तो लक्ष्मण सोच रहे हैं कि वास्तव में ये जो गुहा है कैकेयी ने कहाँ कहाँ प्रभाव डाला है मुझे पता नहीं है, अगर ये गुहा पे कुछ प्रभाव डाल दिया है, अगर हम सो जाएंगे मैं सो जाऊंगा और ये गुहा अगर श्री रामचंद्र को कुछ कर देगा तो पता नहीं। और फिर गुहा सोचता है कि अगर उसी घर में एक माँ है अपने पुत्र के खिलाफ जा सकती है तो भाई भी भाई के खिलाफ जा सकता है तो इसीलिए मैं भरोसा नहीं कर सकता, अगर मैं जाकर सो जाऊंगा तो लक्ष्मण अगर राम को कुछ कर सकते हैं तो क्या है, दोनों प्रभु श्री रामचंद्र से प्रेम कर रहे हैं और उस प्रेम के कारण दोनों एक दूसरे का संशय कर रहे हैं। तो वास्तव में जो प्रेम का भाव है भगवान के प्रति उसमें सब प्रकार की भावनाएं जो है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो वास्तव में इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे भक्तों का संशय करना चाहिए, इसका भाव यह है कि भगवान के प्रति हमेशा चिंता होनी चाहिए, कि भगवान की सेवा जो है हमेशा उचित चलनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी दशम स्कंद जब हो रहा होता है, लेकिन तात्पर्य जब लिखते हैं, जब पूतना आती है या तृणावर्त आता है, तो जब तृणावर्त भगवान को ऊपर ले जाता है तो यशोदा माई प्रेम के कारण भाव विभोर होकर बेहोश हो जाती है। और प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं उन उस अध्याय में कि भक्त के लिए जो अपनी सेवा है वही भगवान का स्वरूप है। तो इसीलिए जिस तरह से यशोदा माँ भगवान कृष्ण के बारे में चिंतित है, वैसे भक्त को अपनी सेवा के प्रति, जो इस्कॉन के भक्त है उनको इस्कॉन के प्रति चिंतित होना चाहिए कि उसका संरक्षण करना चाहिए, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो वास्तव में कि जो भगवान के प्रति चिंता है, भगवान की सेवा के प्रति चिंता, वह हमारे भगवान के प्रति प्रेम का प्रदर्शन है। प्रभुपाद जी जब बम्बई का मंदिर बना रहे थे तो उस समय बहुत सी समस्याएं आ रही थी वहाँ पर, कोई राजनीतिक तो विरोध कर रहे थे, जो सरकार थी वो इजाज़त नहीं दे रही थी, कभी गुंडे आकर आक्रमण कर रहे थे। वर्तमान कृष्ण महाराज जो वहाँ पे सेवा कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, एक बार वो प्रभुपाद जी के पास गए। वे प्रभुपाद जी जब मैं ये इतना सारा परेशानी है यहाँ पे कि मेरा जब भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्रभुपाद जी बोले हाँ मेरा भी जब डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी तमाल कृष्ण महाराज कुछ बोल ही नहीं पाए, अभी क्या बोलेंगे। प्रभुपाद जी बोले मेरा जब डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्रभुपाद जी बोले योर एंग्जाइटी फॉर कृष्णा विल टेक यू बैक टू कृष्णा, कि आपके भगवान कृष्ण के प्रति जो चिंता है वह आपको भगवत धाम ले जाएगी। तो वास्तव में कई बार लोग सोचते हैं कि हम भक्ति में आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं, मन शांति के लिए आ रहे हैं, तो मन शांत करना। हाँ, एक दृष्टि से भगवान के संबंध जो होता है वो उसमें दिव्य शांति है, पर शांति से ऊंची जो है वो है भगवान के प्रति प्रेम। और प्रेम में जो भावनाएं होते हैं उनमें से एक भावना भी है चिंता। आनंद एक भावना है, चिंता भी एक भावना है। तो ऐसे नहीं है कि भक्ति यूनिडायमेंशनल है, क्योंकि एक ही प्रकार की भावना है, हर प्रकार की भावना भक्ति में सम्मिलित है। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्तिरसामृत सिंधु ये ग्रंथ लिखा है जिसमें अनेक प्रकार की भावनाएं, अलग प्रकार के रस कैसे भक्ति में महसूस होते हैं भक्तों को, उसका वर्णन करते हैं वो। तो इस तरह से रात भर लक्ष्मण और गुहा ये दोनों प्रभु श्री रामचंद्र का पहरा दे रहे, रक्षण कर रहे हैं। फिर सुबह उठते हैं, ऋषि रामचंद्र कहते हैं स्नान के बाद कि अभी हमें आप कुछ योजना बनाओ जिससे कि मैं इस सागर के इस नदी के पार जाऊं। तो वो कहते हैं, वो अपने ही उनके निषाद का निषादों में से एक नावी होता है, उसको बुलाते हैं कि आप प्रभु श्री रामचंद्र को इस नदी के पार ले जाओ। बोलते ये तो बड़ा मुश्किल बात है, मैं नहीं ले सकता। बोले क्यों? वो कहते हैं कि ये प्रभु श्री रामचंद्र के कमल है, ये इनमें क्या अद्भुत शक्ति है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चरण कमल अहल्या एक पत्थर था, पत्थर को स्पर्श कर दिया तो उससे क्या हो गया, वो पत्थर एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। कहते हैं कि अगर इनके चरण कमल मेरे नाव पे स्पर्श करेंगे तो मेरे नाव अगर एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगी तो फिर मेरी पहले से एक पत्नी है, एक और पत्नी का मैं देख लाभ कैसे करूंगा, और नाव से तो मैं मेरा रोजी रोटी कमा रहा हूं। तो प्रभु श्री रामचंद्र कहते नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, नहीं मैं जानता हूं कि आप विश्वास के पात्र नहीं हैं। भगवान को कह रहे हैं कि हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते। तो ये प्रेम का भावना है, वास्तव में ये सब उनकी योजना है, गुहा और ये नाविक जो है दोनों की योजना है। तो फिर क्या, तो फिर हम कैसे जाए? तो वास्तव में आपके पैर में कुछ जादू है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके चरण कमलों को पूरी तरह से धो लूंगा ताकि जो जादू है वो आपके चरण कमलों से निकल जाए, फिर आपके चरण कमल मेरे नाव में रख सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल को धोते हैं, और जो चरणामृत है डायरेक्ट भगवान का चरणामृत वे स्वयं लेते हैं, गुहा को देते, सब निषादों को बांटते हैं। तो उसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र वो नाव में बैठते हैं और पार जाते हैं। जब पार जा रहे होते हैं तो तभी पहली बार, अभी वे वास्तव में अकेले हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र चिंता व्यक्त करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अयोध्या में वास्तव में कहाँ होगा। अभी तक प्रभु श्री रामचंद्र अपना जो दुख है, अपनी जो चिंताएं है, बिल्कुल व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, अभी हम तो जंगल में जा रहे हैं, पर हमारे पिता बड़े उद्विग्न हैं और कैकेयी का जो भाव है वो बड़ा विचित्र है। तो अभी कैकेयी आगे और क्या षड्यंत्र करेगी यह पता नहीं है मुझे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में आपको जाना चाहिए वापस। आप जाओ अयोध्या में वापस और आप हमारे पिता और हमारे जो माताएं हैं कौशल्या और सुमित्रा की देखभाल करो, नहीं तो फिर अयोध्या में कैकेयी के प्रभाव से क्या हो जाएगा मुझे पता नहीं है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि वास्तव में मैं आपके बिना जी नहीं सकता, और भरत जल्दी ही आ जाएगा और भरत सब कुछ संभाल लेंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र की जो बात को वो टालने के लिए अनेक कारण बना देते हैं और वो चलते हैं। इसके पहले जब वो नाव में बैठने वाले होते हैं तो सुमंत्र उनके साथ आए होते रथ लेके, तो अभी रथ तो नाव पे जाएगा नहीं, तो सुमंत्र कहते हैं कि अभी मेरे लिए क्या आदेश है आपका। तो ऋषि रामचंद्र कहते हैं कि आपने बहुत उत्तम सेवा की है और अभी आप कृपया वापस अयोध्या चले जाओ। तो जो सुमंत्र है, कई आचार्यों ने सुमंत्र की तुलना अक्रूर से की है। आप जानते हैं अक्रूर याने यदुवंशनाथ, अक्रूर के यान में बैठ के जो यदुवंशनाथ कृष्ण थे वे वृंदावन छोड़ के चले गए, और जब वृंदावन के छोड़ के चले गए तो सारे जो ब्रजवासी थे वे भाव विभोर हो गए। खास करके जो गोपियाँ थी वो तो अपनी बिल्कुल भावनाओं को बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाए, और उनकी जो भावनाएं हैं वो गोविंद दामोदर नाधवेती, वो बहुत सुंदर श्लोक दशम स्कंद में आता है, एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशा, एवं ब्रुवाणा इस तरह से बोले विरहातुरा भृशा, विरह से वे आतुर हो गए। किस प्रकार का विरह था? भृशा, बहुत ही विशाल भीषण विरह था वो। तो जिस तरह से अक्रूर वास्तव में प्रभु श्री कृष्ण भगवान को ले जाते हैं, वैसे ही जो सुमंत्र है वो प्रभु श्री रामचंद्र को ले जाते हैं अयोध्या से। पर एक तरह से सुमंत्र की जो सेवा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको खाली रथ वापस अयोध्या भी ले जाना है। तो अक्रूर को खाली रथ वापस तो ले जाना नहीं था। तो अक्रूर सोच रहे थे, सुमंत्र सोच रहे थे कि वास्तव में मैं अकेले कैसे जाऊंगा, और आपसे मैं विरह सहन नहीं कर सकता, आप कृपया मुझे आपके साथ आने दो और मैं 14 साल आपके साथ रह के मेरी क्षमता के अनुसार आपकी सेवा करूंगा। तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र उनसे कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र बड़े ऐसे उनका बताए सत्यवाग सत्यव्रता, वो बड़े वाली प्रमथनो वाग में सत्यवाग सत्य संक सत्यवाक सत्य विक्रमहा सत्यवाक, वो हमेशा सत्य बोलते हैं और वाग्मी वचनों में बड़े दक्ष है। तो वो देखते हैं कि सुमंत्र बड़े भाव विभोर हो गए, तो वो कहते हैं कि वास्तव में आप हमारे पिता के मंत्री हैं, और मंत्री का प्रधान कर्तव्य है कि राजा को मदद करें, खास करके जब राजा समस्या में हो। तो मैं जानता हूँ कि आपका मेरे प्रति प्रेम है, पर मेरे प्रति जो प्रेम है उसके कारण कृपया आप अयोध्या जाओ और मेरे पिता की सेवा करो, मेरे पिता को आपकी बहुत ज़रूरत है। और फिर वो कहते हैं आगे कि जब तक राजा को राज्य में खबर नहीं मिलेगी कि मैं वास्तव में वन में पहुंच गया हूँ, तब तक कैकेयी को यह आश्वासन नहीं होगा कि दशरथ महाराज ने उनको जो वचन दिया था वो पूरा किया है। और जब तक मैं वास्तव में जंगल में नहीं जाऊँगा यह खबर निश्चित रूप से अयोध्या में पहुँचेगी नहीं, तब तक जो भरत का राज्याभिषेक है वो हो नहीं सकता, जो युवराज के रूप में अभिषेक है वो हो नहीं सकता। और जब तक भरत युवराज नहीं बनेंगे तब तक कैकेयी जो है अलग अलग प्रकार के विचार धारणाएं करते रहेंगे, इसीलिए कृपया आप तुरंत लौट जाओ। और न केवल आप लौट जाओ, पर आप मेरी ओर से बाकी सब मंत्रीगण हैं उनको निवेदन करो कि जो भी दशरथ महाराज कहते हैं उनका आदेश का पालन करो। प्रभु श्री रामचंद्र जानते हैं क्योंकि सब जो मंत्री थे वे जो प्रभु श्री रामचंद्र को जंगल में भेजने का आदेश था उससे नाराज हो गए थे। तो वो सोच रहे थे कि जो मंत्री है अगर वे सोचते हैं कि दशरथ महाराज उचित नहीं है राज्य के लिए और उनके खिलाफ प्रतिकार करते हैं तो दशरथ महाराज को और समस्या हो जाएगी। वो कहते हैं भले ही दशरथ महाराज आपको कहते हैं कि कैकेयी की सेवा करो, आप कैकेयी का आदेश पालन करो, तो भी आप कृपया उसे स्वीकार करो। और फिर इस तरह से जब वो आदेश देते हैं, सुमंत्र देखते हैं कि कितने वास्तव में हमेशा दूसरों के लिए भगवान चिंता कर रहे, स्वयं के बारे में, स्वयं की जो समस्या है उसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं। तो फिर वे विदा देते हैं भगवान को, पर सुमंत्र सोचते हैं कि मैं जाऊँगा नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा। और उनके हृदय के बीच में थोड़ी सी आशा है, थोड़ी उम्मीद की किरण है कि शायद भगवान जाएंगे नहीं। और फिर जब वो नाव पार करके, नाव से नदी पार करके जाते हैं, तो तट पे सुमंत्र और गुहा दोनों जब तक आंखों से दिख रहे हैं वहां तक देख रहे हैं, जैसे गोपियां देख रही होती है भगवान कृष्ण के रथ को। और फिर उन उम्मीद कर रहे हैं कि शायद भगवान श्री रामचंद्र वापस आ जाएंगे। पर दूसरी बार तट की ओर जाके फिर वह भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। और भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब जाते हैं, भरद्वाज मुखानंद कराम चित्रकूटाद्रि निकेतन राम। तो अभी जो ये जो है यहाँ से अरण्यकांड शुरू हो जाता है। तो जब जब प्रभु रामचंद्र भरद्वाज के जो उनकी जो ऋषियों का सब जो कुटियाँ होती है वहाँ पे पहुँचते, उनके आश्रम में पहुँचते, बड़ा आश्रम होता है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वे भरद्वाज मुनि को प्रणाम करते हैं और फिर बताते हैं उनको कि मैं अभी जंगल में जाना चाहता हूँ, तो मैं आप रहना है मुझे, तो मैं आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं कहाँ रहूँ जंगल में। तो भरद्वाज मुनि जानते हैं कि दिव्य दृष्टि से जो जो ऋषिगण होते हैं वे सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो भगवान के बहुत निकट के संबंधी है, जैसे दशरथ महाराज है, कौशल्या है, वो योग माया के प्रभाव से भूल जाते हैं कि ये भगवान है। वो जो ऋषिगण है, क्योंकि वो इतने घनिष्ठ भक्त नहीं है भगवान, महान भक्त है पर वो जो घनिष्ठता है वो नहीं है, इसलिए वो जानते हैं कि ये भगवान है, पर फिर भी समझते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कृपया, वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते, अंदर से समझते हैं कि वे भगवान है, पर बाहर से वो इस तरह से वार्ताव करते हैं कि वे एक ऋषि है और ये एक राजा है। तो कहते हैं वास्तव में मेरे जो कुटिया है, मेरे जो आश्रम है, जंगल में ही है, आप कृपया यहीं पर रह जाओ। तो हम देखते हैं बार बार सब लोग चाहते हैं कि ऋषि रामचंद्र उनके साथ रहे। तो ऋषि रामचंद्र अपना हाथ जोड़ कहते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा आदर की बात होगी कि अगर आपके सानिध्य में रह सकूं, पर मुझे एक ही संकोच है कि आपका जो आश्रम है बहुत प्रसिद्ध है और वो अयोध्या के बहुत पास में है, तो मैं अभी और अयोध्या वासियों को दुखी देख नहीं सकता कि वे आएंगे मुझे निवेदन करेंगे आप लौट के आओ, जब मैं ना बोलूँगा उनको तो उनका जो दुख मायूस चेहरा है, दुखी चेहरा है, मैं इनका दुख और बढ़ाना नहीं चाहता। तो इसलिए कृपया आप मुझे बताइए ऐसी कोई जगह जो इतने लोगों को पता ना हो। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं यहाँ पे पास में ही चित्रकूट नाम की बड़ी सुंदर जगह है। वास्तव में चित्रकूट आद्रि है, ये एक पर्वत है, उस समय चित्रकूट एक ऊँचे पर्वत पर था और वहाँ पे आप जाके रह सकते हो। तो जब ऋषि रामचंद्र ये मार्गदर्शन मिलता है तो फिर वो चित्रकूट को जाते हैं। तो कुछ समय तक चलते हुए जाते हैं, देखते बहुत ही सुंदर पर्वत है, विशाल पर्वत है और लगभग तीन चौथाई उस पर्वत के ऊपर तक लक्ष्मण, सीता और राम चढ़ते हैं। तो जब जा रहे होते तो लक्ष्मण आगे होते हैं अपनी तलवार लेके, जो भी रास्ते में काटे हैं, जो भी पत्थर है या झाड़ियाँ बीच में सबको काटते हैं। सीता बीच में चल रही होती है और ऋषि रामचंद्र अपना धनुष साथ में लेके पीछे से संरक्षण करते हैं। और फिर वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उस समय वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पास में एक तालाब है और पंछियाँ हैं, वो ची ची कर रहे हैं, बड़ा ही मनोरम वातावरण है। तो सोचते हैं हम यहीं पर रहेंगे अभी। और जब वहाँ पर रहने का योजना करते हैं तो लक्ष्मण तुरंत कार्य में लग जाते हैं और कुछ ही समय में वे एक सुंदर कुटिया बना लेते हैं वहाँ पर। और जब वो कुटिया देखते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र इतना प्रसन्न हो जाते हैं, वो लक्ष्मण को आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि जो दशरथ महाराज है उनको आप जैसे पुत्र मिला है जो इतना कर्तव्यनिष्ठ है कि आपके सानिध्य को देखकर, को प्राप्त करके मुझे लग रहा है कि हमारे पिताजी ही मेरे साथ हैं। तो वास्तव में जो प्रभु श्री राम, किसी का गुणगान भी करना है तो प्रभु श्री रामचंद्र इस तरह से गुणगान करते हैं कि वे जिता मित्र, जो मित्र है उनके हृदय को जीत लेते हैं। किसी का भक्त का गुणगान करना है तो समय लगा आप कितना अच्छा गाते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना अच्छा नाचते हो, हम अलग अलग तरह से गुणगान कर सकते हैं। पर वास्तव में भक्त की क्या इच्छा होती है, ये इच्छा होती है वास्तव में कि जो भगवान है और उनके गुरुदेव है उनका प्रतिनिधित्व कर सके उचित अच्छी तरह से, और उनका जो संग है वो उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रदान कर सके। तो वास्तव में जो भगवान गुणगान करते हैं लक्ष्मण का कि आपके संग में मुझे ऐसा लग रहा है कि दशरथ महाराज ही मेरे साथ में है। तो किसी भक्त को के संग के द्वारा किसी को लगता है कि आपके गुरुदेव मेरे साथ में है तो वो भक्त के जीवन की के परम यश है। अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने परम पूज्य भक्त सावंत महाराज के 50वें जन्मदिन के का उत्सव किया था, तभी परम पूज्य राधानाथ महाराज ने जो लिखा था, क्या लिखा था, यू आर द काइंड ऑफ डिवोटी श्रील प्रभुपाद वॉन्टेड टू ब्रिंग टू दिस वर्ल्ड, कि आप ऐसे भक्त हो जिनको प्रभुपाद जी इस दुनिया में अपने आंदोलन में देखना चाहते हैं। तो वास्तव में ये दिस इज द हाइएस्ट ग्लोरिफिकेशन दैट वन कैन गेट, ये सबसे सर्वोच्च गुणगान है जो किसी भक्त को मिल सकता है। तो फिर जब इस तरह से जो गुह जाते हैं, गुह नाव भेजते हैं, पर गुह अपने भगवान के पीछे फिर अपने जासूस भी भेजते हैं, और जासूस बोलते हैं कि भरद्वाज ऋषि के मार्गदर्शन के अनुसार अभी भगवान चित्रकूट में चले गए हैं, और जब उनको ये पता चलता है तो बड़े उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी भगवान वापस नहीं आएंगे। और जब सुमंत्र को तो एक रात और एक दिन पूरा निकल जाता है सुमंत्र को जब पता चलता है तो सुमंत्र बड़े उदास होकर खाली रथ लेके अयोध्या लौट के आ जाते हैं। और इसी बीच अयोध्या में दशरथ महाराज जो होते हैं वो बड़े उदास हो जाते हैं, और उनको वो प्रसंग याद आता है, वो जब कौशल्या के साथ बैठे होते हैं, सुमित्रा उनके साथ में होती है, वो कैकेयी को उन्होंने ठुकरा दिया, बोलते हैं कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है अभी। तो कौशल्या सुमित्रा उनको सांत्वना दे रहे होते हैं, और उस समय अचानक उनको लगता है कि अभी मेरे आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तव में उनको आंखों से कुछ दिखाई दे रहा था, पर हृदय में जो भगवान है उनके सुपुत्र राम के रूप में वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तो तभी वो याद करते हैं कि वास्तव में एक दुर्घटना हुई थी बहुत पहले, जब गलती से मैंने एक बालक था, एक युवा था, युवक था, उसका वध कर दिया था शिकार करते समय। आप सब जानते हो श्रावण की कहानी, और उसके पिता ने शाप दिया था कि जिस तरह से मैं मेरे पुत्र के विरह में मृत्यु में जा रहा हूँ वैसे तुम भी मृत्यु में जाओगे। तो तभी जब वो बोलते हैं तभी दशरथ महाराज याद आता है कि अभी मुझे प्रसंग आ गया है, और फिर बड़े उद्विग्न हो जाते हैं वो। और उनका उद्विग्नता अपनी मृत्यु आ रही इस पर इतना नहीं है जितना कि ऋषि रामचंद्र का विरह उनको महसूस हो रहा है। और फिर वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वे रात को बहुत देर तक भगवान के स्मरण स्मरण करते हुए रोते हुए बाद में सो जाते हैं, और वो जब सुबह उनको उठाने के लिए आते हैं जो राजमहल के सेवक, तो वो देखते हैं कि दशरथ महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया है, वे भगवत धाम लौट गए हैं। तो जो अयोध्या वासियों के लिए ये दूसरा बड़ा सदमा होता है कि जो हमारे प्रिय राम है वो वन में चले गए, और जो हमारे राजा है दशरथ महाराज वे परलोक चले गए। तो तभी ऐसी विपत्ति थी कि चारों पुत्रों में से एक भी नहीं था, चार पुत्र है तो एक भी वहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए तो वशिष्ठ ऋषि जो होते हैं वो तभी आनी वाणी इमरजेंसी में वो राजा की सेवा करने लगा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि तुरंत हमें भरत को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि अंत संस्कार भी यही करना है तो पुत्र को करना चाहिए, तो भरत को तुरंत आना चाहिए यहाँ पे। तो भरत को, और वो कहते हैं कि भरत को आप बताओ मत क्या हुआ है, क्योंकि ये जो सदमा है वह अगर उसको सहन करना है, दो बड़े सदमे हैं, तो यह आवश्यक है कि वो अपने जो सगे संबंधी हैं उनके बीच में हो तब उनको पता चले। तो फिर उसी दिन जब भरत उठते हैं तो उनको अनेक बहुत ही बुरे सपने आ रहे होते हैं, तो बड़े उदास हो जाते हैं वो। तो वहाँ पे जो कैकेयी के पिता के राज्य में गए होते कुशध्वज में, तो वहाँ पे वे उस सारे दिन भर उदास रहते हैं, और जब संदेश वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि कृपया आप आ जाओ वापस, तुरंत आने को आपको निवेदन दिया है वशिष्ठ ऋषि ने। तो दशरथ भरत सोचने लगते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने क्यों नहीं ऐसा आदेश दिया है, मेरे पिताजी ने दशरथ महाराज ने क्यों नहीं दिया है। संकोच हो जाता, वो पूछते क्या बात है, पर संदेशवाहक जो होते बिल्कुल बताते नहीं है क्या हुआ है। और फिर जो राजा होते हैं सोचते हैं कि तुम्हें मैं बहुत से भेंट दूंगा, वो तो वो सोचते हैं कि जब जा रहे हैं, कोई जा रहा है तो भेंट देना ये प्रथा होती है। पर दशरथ भरत स्वीकार करते हैं, पर उनको दुख होता है एक तरह से कि इतने सारे भेंट देते हैं, बहुत से सैनिकों को अपने साथ भेजते हैं, तो भरत को वो सारे सैनिक रथ साथ में लेके आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो बाद में जब वो अयोध्या में पहुँचते हैं, अयोध्या के बाहर ही पहुँचते हैं, शत्रुघ्न और वो रथ में आ रहे हैं, तो फिर वो देखते हैं, शत्रुघ्न से कहते हैं कि आप सारे सैनिकों को रथ और जो सारे भेंटे उनको लेके आ जाओ, मैं आगे जाता हूँ। और जब वो शहर में पहुँचते हैं तो शहर लगभग निष्क्रिय जैसे हो गया है, कुछ जीवन ही नहीं है उसमें। तुम्हारे आचार्यगण बताते हैं कि वास्तव में हमारा हृदय जो है अयोध्या के समान है, और हम भगवान की जब ईर्ष्या करते हैं, जैसे कैकेयी ने भगवान की ईर्ष्या की, तो हम भगवान को हमारे हृदय से बाहर निकाल देते हैं। जब भगवान को हमारे हृदय से बाहर निकाल देते हैं तो जैसे अयोध्या नगरी जो थी एक भूत नगरी की जंग बन गई थी, तो वैसे हमारा हृदय जो होता है पूरा सूखा पड़ जाता है। जो हृदय में कोई आनंद कोई संतुष्टि का अनुभव नहीं रहता है, और जो जीवन चलते रहता है, अयोध्या में जीवन चल रहा था पर जीवन नहीं था, जीवन का रस जीवन का आनंद कुछ भी नहीं था। तो भगवान के सेवा के बिना, भगवान के प्रेजेंस, भगवान के विद्यमान उपस्थिति के बिना वास्तव में हृदय जो होता है वो सूना पड़ जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं भौतिक जगत में लोगों को पता नहीं है क्यों हमेशा असंतुष्टि है, क्यों हमेशा हृदय को आनंद नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि शायद मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये बड़ा घर मिल जाएगा, एक कार मिल जाएगी, कलर टीवी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो है, वो सब जो है वो वास्तव में कुछ भी हृदय को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा हृदय है केवल भगवान ही उसको संतुष्ट कर सकते हैं। तो कैकेयी को वास्तव में सारा राज्य मिल जाता है, पर अभी कैकेयी ने अपना ही एक सपना बना लिया था, और न केवल अपना सपना बना लिया था, अपने सपने में भरत को भी एक भूमिका दी दी थी कि मैं जो योजना बना रही हूँ भरत इससे बहुत प्रसन्न होगा। सोचे थे कि भरत कितना खुश हो जाएगा कि मैंने उसके लिए राज्य सारा योजना कर दी है, और फिर मेरी सराहना करेगा, और फिर हम दोनों वो राजा और मैं राजा की माता राजमाता हम राज करेंगे, ऐसे कह के सपना देख रही थी। तो वास्तव में जब हम हमारा जो मन के प्रभाव से हम अलग अलग कार्य सोचते हैं, तो जब हम जानते हैं कि कोई कुछ चीज़ गलत कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि कोई और लोग जो यहाँ पे नहीं है वो जो मैं कर रहे हैं उसे पसंद हो जाएगी, और उस तरह से जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है वो सही है, ये हम खुद को आश्वासन दे देते हैं। तो इस तरह से ये मन की चाल है। तो कैकेयी ने अपने मन में काल्पनिक भरत बना लिया था कि जो उसने जो सारा षड्यंत्र रचा था उसकी सराहना करेगा, पर अभी जब ये काल्पनिक भरत और असली भरत इन दोनों की टक्कर होती है, और टक्कर कहाँ होती है, कैकेयी के हृदय में। तो फिर जब भरत लौट के आते हैं तो फिर वो देखते हैं पूरा शहर सूना पड़ा है, न केवल शहर सूना पड़ा है, कोई भी उनकी ओर देख नहीं रहा है। जो राजा जो राजमहल के पहरेदार होते हैं वो उनको प्रणाम करते हैं पर उनसे आंखें नहीं मिलाते हैं, वो सीधा जाते हैं दशरथ महाराज के महल में, और दशरथ महाराज के महल में देखते हैं महाराज कहीं है ही नहीं, और जो सारे महल के सेवक है वापस सब उनसे आंखें टाल रहे हैं, कोई उनसे कुछ बोल नहीं रहा है। तो तुरंत दशरथ महाराज के महल के बाजू में ही उनके तीन रानियां उनके महल होते हैं, तो फिर वो तुरंत कैकेयी के महल में जाते हैं, और जब कैकेयी के महल में पहुंचते हैं तो कैकेयी को प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया गया, दशरथ महाराज कहाँ है, सारा शहर इतना सूना क्यों लग रहा है। तो कैकेयी उनको आलिंगन करती है, बड़ी प्रसन्न होती है कि अभी भरत आ गए हैं, और फिर कैकेयी कहते हैं कि दशरथ महाराज उनको वो गति मिल गई है जो सब जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ये नहीं सोचे कि मेरे लिए भी अनिवार्य है, वो तत्वज्ञान इसीलिए बता रही है कि दशरथ को भरत को सांत्वना देने के लिए, ताकि वो भी उसके जैसे भौतिकवाद में लग जाए। देखिए तो जब दशरथ महाराज भरत ये सुनते हैं तो भरत ज़मीन पर गिर जाते, बोलते कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली था कि वास्तव में मैं दशरथ महाराज के बाजू में नहीं था, सोचते हैं कि दशरथ महाराज को क्या हुआ था, क्या बीमारी हुई थी, और जब वो अंत में जब वो चले गए तो उन्होंने मेरे लिए कुछ संदेश दिया होगा, कुछ आदेश दिया होगा। राम और लक्ष्मण कितने भाग्यवान हैं कि वे मेरे पिता के बाजू में थे, मैं नहीं था उनके बाजू में। हे माता, राम को, राम और लक्ष्मण को बुलाओ ताकि मेरे पिताजी ने क्या कहा अंत में वो मुझे बताया जा, वो मुझे बता सके वो। तो भरत रो रहे होते, तो कैकेयी भरत के भाव को बिल्कुल समझ नहीं पाती है और वो कहती है वास्तव में हे भरत, मैं बताऊंगी तुम्हें दशरथ महाराज के आखिरी वचन क्या आते। वो कह रहे थे कि जो राम लक्ष्मण और सीता को देख पाएगा लौट कर आते हुए वो बहुत भाग्यवान होगा, मेरा ये भाग्य नहीं है। तो ये सुन के भरत और भी भ्रमित हो जाते हैं, क्या मतलब आपका, क्या राम और लक्ष्मण वहां पे नहीं थे, क्यों नहीं थे राम और लक्ष्मण वहां पे, क्या हुआ था। तो कहके बोलती है कि राम को वनवास भेजा गया था 14 साल के लिए, और लक्ष्मण और सीता ने भी उनके जाने, उनके साथ जाना चाहा, इसलिए वो तीनों वन में चले गए थे। जब भरत ये सुनते हैं तो उनको बड़ा सदमा लगता है कि राम को वनवास क्यों भेजा। तो वनवास जो है ये अगर कोई बहुत बड़ा गुनाह करता है तो सबसे बड़ा गुनाह जो है उसके लिए जो सजा है मृत्युदंड, और मृत्युदंड से एक नीचे के स्तर की जो सजा है वो है वनवास। वो कहते हैं कि राम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि वन में भेजा उनको, क्या राम ने कभी किसी उच्च ब्राह्मण के धन को छीन लिया, क्या ब्राह्मण, क्या राम ने किसी नागरिक का वध कर लिया, यह तो कदापि संभव नहीं है कि राम किसी किसी और के पत्नी की और कुछ गलत कार्य कर सके। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि राम कोई पाप कर सकता है, कोई गुनाह कर सकता है, तो फिर राम को वन में क्यों भेजा गया। तो तभी कैकेयी सारी कहानी बताती है, और कैकेयी ऐसा से बता, बड़ी प्रसन्नता से बता रही होती है, और सोच रही होती है कि वो सोच रही कि जो भरत है ये मेरे कल्पना का ही भरत है, तो अभी जो है ये थोड़ा अलग भावना है में, पर असली भरत आ जाएगा वापस यहाँ पे। जैसे वास्तव में जो जब इस तरह से भरत जो होते हैं सुनते हैं पूरा, और जब सुनते हैं कि कैसे कैकेयी ने 2 बार मांगे थे, उनको बाहर जंगल भेज दिया वनवास में, और फिर दशरथ महाराज का देहांत तो हो गया, तभी जब सुन रहे होते हैं तो भरत और भी पहले विस्मय होता है, फिर क्रोध होता है, फिर घृणा होती है, फिर भय होने लगता है। पहले विस्मय होता है कि ये मेरी माँ है, क्या बोल रही है, सत्य है, सपना है, फिर बाद में क्रोध होने लगता है, ये इतना बड़ा अत्याचार, इतना अन्याय है, कैसे संभव हो सकता है ये, फिर उसके बाद में घृणा होने लगती है कि वास्तव में मेरी माँ है, कैसे इसे कार्य कर सकती है, और फिर भय होने लगता है कि लोग सोचेंगे कि मैं भी षड्यंत्र में सहभागी था। तो इसलिए जो उनके हृदय में मानो एक तूफान आ रहा है, और जब कह के पूरा अपने वृत्तांत बताती है, कहती है कि हे भरत, अभी ये सारा राज्य है तुम्हारे लिए ही है, अभी तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए। तो भरत सुन रहे होते कुछ बोल नहीं पाते, पर जब ये अंतिम वाक्य सुनते हैं और जिस प्रसन्नता से कह के ये बोलती है, तो फिर भरत जो होते हैं वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाते। तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया था, ऐसे तुम कैसे कल्पना कर सकती हो कि जो राज्य राम का है मैं उसके प्रति ईर्ष्या कर सकता हूं, वास्तव में तुम मेरी माँ नहीं हो, जो ब्रह्मांड को नाश करने वाली महाकाली देवी है तुम उसका अवतार हो, जो हमारे कुल में आई हो, कुल में आई हो हमारे वंश का विनाश करने के लिए। कि तुम्हारा जो ये षड्यंत्र है मैं कभी इसको यशस्वी नहीं होने दूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, न केवल राम को वापस ले आऊंगा, पर तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं जंगल में जाके 14 साल रहूंगा। जब कहके ये सुनती है तो उसका सारा जो काल्पनिक भरत था वो कहां गया, वो समझ भी नहीं आता क्या हो गया ये? भरत ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। तो भरत कहते मेरा नाम मत लो, तुमने मुझे पूछा नहीं, तुम जानते तुमने क्या किया है ये तुम्हें खुद को पता नहीं है, तो तुम्हारे क्या दिमाग में आया था। तो कह जब इस तरह से देखती है, भरत क्रोधित हो गया है, तो फिर वो सब कुछ बताती है कि वैसे मैं कुछ भी नहीं करती, पर मंथरा ने मुझे चेतावनी दे दी क्या क्या होने वाला है। तो फिर भरत बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारा षड्यंत्र कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं जंगल में जाके राम को वापस ले आऊँगा। अब इस तरह से वो चीख रहे होते हैं अपनी माँ की ओर, कह के कुछ बोल नहीं पा रही होती। और तभी उनको स्मरण आता है कि अभी पिता नहीं है, उनकी माँ भी इस तरह से भाव व्यक्त कर रही है कि उनकी माँ है जो पहचान भी नहीं पाएगी। तभी उनका विचार आता है कि कौशल्या और सुमित्रा जो उनके दूसरे माँ के समान है उनके पास जाए, क्योंकि उनके भ्राता भी और कोई है ही नहीं, राम भी नहीं है, पिता भी नहीं है, माँ भी ऐसा बर्ताव करी। तो सुमित्रा का महल कौशल्या का महल बाजू में होता है, तो जब जा रहे होते हैं तभी कौशल्या भी भरत की आवाज़ सुनती है, और कौशल्या दौड़ते हुए आती है और भरत उनको प्रणाम करते हैं और कौशल्या के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। कौशल्या कहती है, हे भरत, तुम्हारे माँ ने तुम्हारी योजना बहुत अच्छी तरह से बनाई, अभी तुम बड़े आनंद से इस राज्य में राज करो, पर मेरा एक निवेदन है तुमसे कि तुम्हारी माँ ने मेरे पुत्र को वन में भेज दिया, तुम मुझे भी उसी वन में भेज दो, मैं यहाँ पर जी नहीं सकती, जो जहाँ मेरा पुत्र कुटिया में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, मैं वहाँ पर रहूँगा, तुम कृपया मुझे वहाँ भेज दो और फिर तुम इस राज्य में आनंद से रहो। तो जो भरत का सबसे बड़ा भय होता है कि लोग सोचेंगे कि मैं भी इस षड्यंत्र में एक सहयोगी था, वो उनको देखता है कि जब कौशल्या ऐसे कहते हो समझ जाते हैं कि सब लोग यही सोचेंगे, तो कौशल्या के चरण में गिर जाते हैं, कहते हैं कि हे माँ, कैकेयी ने जो किया मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्या आप जानती हो मेरा राम के प्रति क्या प्रेम है, मैं कैसे राम के प्रति ऐसे कुछ सोच सकता हूँ। तो इस तरह से जब प्रामाणिकता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो कौशल्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं, कहते हे, वो भरत को उठा के आलिंगन कर लेती है, हे भरत, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय निष्कपट है। फिर सुमित्रा भी वहाँ पर आ जाती है, शत्रुघ्न के पीछे से आ ही रहे होते, और फिर जब इस तरह से सब साथ में रो रहे होते, सोच रहे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कई बार ऐसे होता है कि हमारे खिलाफ कभी गलत इंजाम लग जाता है। वैसे हमें सोचना ही चाहिए कि पहले से ये गलत इंजाम है, सत्य भी हो सकता है सत्य है क्या देखना चाहिए पर कभी कभी क्या होता है, अगर कोई गलत इंजाम लग जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया होती है कि प्रतिशोध करना, क्या करता है, प्रतिकार करना, तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, तुम खुद जानते हो तुम में कितने सारे दोष हैं। तो क्या होता है जब इस तरह से जब मामला होता है तो बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। तो भरत जानते हैं कि सब बड़े दुखी है, और भक्तों के समाज में अगर कोई किसी के खिलाफ कोई आरोप या इंजाम लग रहा है तो साधारणतः कोई भी आनंद से नहीं लगाता है, तो कुछ परिस्थिति होती है, परिस्थिति के कारण वैसा निष्कर्ष कोई निकाल सकते। तो भरत दिखाते हैं कि हृदय से स्पष्टता से प्रामाणिकता से अगर कोई बताता है तो जो गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या और सुमित्रा रात भर रोते हुए रात का समय निकालते हैं, और अगले दिन उनके महल में वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि आते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हे भरत, अभी आपको जो दशरथ महाराज है उनका अंतिम संस्कार करना है, काफ़ी समय अभी हो गया है, पहले से ही काफ़ी देर हो गई है, तो कृपया अभी आप अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाओ। तो भरत तुरंत उठते स्नान करते जाते हैं, और फिर जो भरत महाराज का शरीर होता है उन्हें से तेल के बड़े डिब्बे में रखा होता है ताकि वो उस स्थिति में रह के उसके अंतिम संस्कार कर सके। और फिर दशरथ महाराज को देख के वो वापस रोने लगते हैं। फिर जाके अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होकर जब वापस आ रहे होते हैं तो जब वो सब राजमहलों के सामने से जा रहे होते हैं तो भरत को उस महाराज नहीं हुए तभी तक, वो भरत जब होते हैं उनको कुछ मंत्री मिलने लगते, बात करने लगते, तो शत्रुघ्न आगे जाते हैं, और शत्रुघ्न जब आगे जा रहे होते हैं तो उनको उनके सामने मंथरा दिखती है, और मंथरा ने बहुत ही रेशमी कपड़े पहने हुए हैं और बड़े जेवर पहने हुए हैं, और कैकेयी ने उनको वादा किया होता है कहीं कहीं कभी कितना जो विचारधारा है पूरे उल्टी हो जाती है। और वो कहते हैं कि जो कुब्जा हो सॉरी जो मंत्रा होती है वो कुबड़ी होती है। तो कई कई कहती है जो कुबड़ी लोग कुबड़े लोग होते हैं वो कई बार धूर्त होते हो, पर ऐसे धूर्त कुबड़ियों में तुम एक आदरणीय अपवाद हो। तो और तुम्हारी जो कुबड़ी है जब भरत राजा बन जाएगा तो तुम्हारे कुबड़ियों को मैं मोतियों के माला से सुशोभित कर दूंगी, तो ऐसा वादा करती है उसको। तो अभी जो मंत्रा है उसने बड़े रेशम के कपड़े और बड़े आभूषण पहने हुए हैं, पर जब वो शत्रुघ्न को देखती है तो डर जाती है, वहां से दौड़ने लगती है वो। अब दौड़ वो सीधा दौड़ के जाना चाहती है कैके के महल में जाकर छुप जाना चाहती है, पर जब जा रही होती है तो क्या होता है, वास्तव में वो मंत्रा जो होती है सब जो राजा के महल के सेवक है उनके क्रोध के उद्देश्य क्रोध का उद्देश्य कारण बन जाती है। राजा के सेवक है वो कई कई की ओर तो क्रोध डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो अपने स्तर के व्यक्ति पे क्रोध कर सकते हैं, तो इसीलिए वे मंत्रा पे क्रोध करने जाते हैं। तो देखते हैं अभी मौका है, तो राजा के महल के जो वहाँ पे पहरेदार होते हैं मंत्रा अंदर दौड़ रहे थे वो पकड़ लेते हैं उनको और उसको खींचते हुए शत्रुघ्न के पास लेके आते हैं। तो कहते हैं यही वो जड़ है जिसके कारण आज हमारा राज्य एक दुख के सागर में डूब रहा है, इसको पकड़ो और आप इसको सजा दो। और शत्रुघ्न उसको पकड़ते हैं जोर से खींचने लगे, ढकेलने लगते हैं, हिलाने लगते हैं, तो चीखने लगती है वो, और चीखने लगती है तो कहके अपने महल से बाहर आ जाती है। कहके जब बाहर आ जाती है शत्रुघ्न कुछ बोलना चाहती है पर शत्रुघ्न के चेहरे का जो क्रोध देख के वो भी डर जाती है, और पीछे वो देखते हैं कि भरत आ रहे हैं, उसे भरत आखिर मेरा ही पुत्र है, तो भरत के पास जाते, भरत रोको उसे। तो भरत बड़े ठंडे आवाज से बोलवाणी से बोलते हैं कि हे शत्रुघ्न मेरी तो इच्छा है कि जो तुम मंथरा के साथ कर रहे हो मैं कैके के साथ करूं। तो कैके अभी क्या कर रहे हैं वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो फिर तभी बोलते हैं पर मैं जानते हूं कि अगर हम मंथरा या कैके को कुछ करेंगे तो प्रभु श्री राम जो राम है वो कभी हमें माफ नहीं करेंगे, कभी हमें माफ नहीं करेंगे, इसीलिए आप कृपया मंथरा को छोड़ दो। वास्तव में यहाँ पे एक तरह से भरत और शत्रुघ्न दोनों का क्रोध स्वाभाविक है, पर बाद में भविष्य में वर्णन आता है कि कैसे, इसके बारे में हम अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे कि जो दिव्य भावनाएं हैं और भौतिक भावनाएं हैं उनमें क्या फर्क है। पर यहाँ पे तो कौशल्या और कैके मंथरा फिर अपने महल में चले जाते हैं, फिर भरत लौट के आते हैं, फिर 10 दिन के लिए जो शोक का समय होता है सारा युद्धानगरी शोक में होती है कि दशरथ महाराज गुजर गए हैं, उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, और फिर वशिष्ठ आते हैं और वो कहते हैं भरत से कि अभी आपको राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, क्योंकि आप राजा की वही इच्छा थी और जो वरिष्ठ पुत्र है राम नहीं है, तो वो जो सारा राज्याभिषेक का जो सामग्री है लेके आए होते, तो भरत महाराज और जो राज सिंहासन उसको अपने हाथों से वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जो कैके ने किया वो मेरी इच्छा के पूर्ण से खिलाफ था और मैं कभी भी राजा नहीं बन सकता जब तक राम है, तो मेरी इच्छा ये है कि कृपया मैं जंगल में जाऊंगा और मैं राम को वहां से लेके आऊंगा, पर मैं जो हूँ छोटा भाई हूँ मैं, तो राम मेरी बात को नहीं सुनेंगे, तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब वरिष्ठ हो, आप मुझसे भी वरिष्ठ हो और राम से भी वरिष्ठ हो, वशिष्ठ होते हैं और अनेक मंत्री भी होते हैं, तो आप कृपया मेरे साथ चलो और हम सब साथ में जाएंगे और हम सब साथ में अगर बोलेंगे तो राम जरूर आएंगे। और जब इस तरह से भरत कहते हैं तो सारे जो अयोध्या के मंत्रीगण होते हैं सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भरत सोच रहे होते इस तरह से कि श्री रामचंद्र वापस आ जाएंगे तो वो भी आनंदित हो जाते हैं, और जब इस तरह से जानकारी पहुंचती है सारे अयोध्यावासियों में कि भरत जाएगा जंगल में श्री रामचंद्र को लेके आने को, तो उस समय वो सब कहते कि हम भी साथ में आएंगे। तो तभी हजारों की मात्रा में लोग जा रहे होते हैं, हजारों की मात्रा में लोग जा रहे हैं, तो फिर जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो फिर भरत कह सोचते हैं कि हम इस तरह से योजना बनाएंगे कि मैं तो हजारों लोगों को साथ में लेके जाऊंगा इस रास्ते पे, पर जो राजा है वो ये सारा राज्याभिषेक का जो सामग्री है वो भी हम साथ में ले जाएंगे, और जो अयोध्या के राजा है प्रभु श्री रामचंद्र वो इस रास्ते से वापस आएंगे, तो इसीलिए हमें इस राजा को इस रास्ते को एक राजा को चलने के लिए उचित रास्ता होना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। तो इसीलिए वो आदेश देते हैं कि एक आप सुंदर बड़ा रास्ता बनाओ और उसके आजू बाजू में रहने के लिए खाने के लिए पीने के सब योजना बनाओ। तो सारे अयोध्यावासी होते हैं, उनमें जो श्रमिक लोग होते हैं वो सब सेवा करने लग जाते हैं, और एक महीने में वो अयोध्या से नदी के तट तक एक सुंदर रास्ता बन जाता है, और फिर वे उस रास्ते पे निकल पड़ते हैं, और लगभग पूरे अयोध्या जो है भरत के साथ चलती है। और जब भरत के साथ चलती है तो सबके हृदय में एक ही उम्मीद है कि प्रभु श्री रामचंद्र को हम वापस ले आएंगे। और फिर वो पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ पे गुहा का राज्य होता है, और गुहा जब देखते हैं कि एक विशाल सेना वहाँ पे आ रही है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो गुहा जो होता है प्रेम के कारण संशय करने लगता है, और गुहा कहते हैं कि आप हमारे सारे सैनिकों को तैयार रखो। कहता है कि हम हमारे सैनिकों की एक जो व्यूह है हम यहाँ पे जंगलों में उनको चिपको रहने का बोलेंगे, दूसरों को नदी के उस पार रहने को बोलेंगे, हमारे सारी सेना को आप दो विभागों में बांट दो। वो कहते हैं, वो निषाद होते हैं तो वो जंगल में युद्ध करने के लिए बड़े दक्ष होते हैं, तो सोचते हैं कि अगर ये प्रभु श्री रामचंद्र पे आक्रमण करना चाहते हैं तो जंगल से जब जा रहे हैं तो हम जंगल में झाड़ों में छिपके उन पे आक्रमण करके उनको आगे नहीं जाने देंगे, और उसके बाद में भले जंगल से निकले वो और नदी में आ गए, नदी पार करना है तो हमारे सारे सैनिक नदी के उस पार रहेंगे और उनको नदी में जब नाव में हो गए तभी उन पर प्रहार करके उनको वहां पर रोक देंगे। तो पूरी योजना बना लेते हैं, पर फिर वो सोचते हैं कि देखते हैं कि इनके साथ उनकी माँ भी आ रही है, वशिष्ठ ऋषि भी आ रहे हैं, सब मंत्री भी आ रहे हैं, सुमंत्र भी है, सोचते हैं कि इतना सारा युद्ध करने के पहले जाके पूछना चाहिए क्या कारण क्या है, वास्तव में जो भरत का हृदय क्या है वो मुझे पूछना चाहिए। तो फिर जाते हैं, और क्योंकि अभी भरत राजा है एक तरह से, तो बहुत सारे भेंट लेके जाते हैं और भरत से मिलने जाते हैं, तो सुमंत्र देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है गुहा ये प्रभु श्री रामचंद्र के बड़े घनिष्ठ मित्र है, उनको ज़रूर पता होगा कि राम कहाँ है, वो आपसे मिलने आए, कृपया आप उन्हें आपसे मिलने आने दो और वो आपको बताएंगे। तो भरत तुरंत उनको कहते आने को, तो प्रणाम करते सब भेंट देते हैं, और फिर भरत कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपने जो हमारा अतिथि के रूप में स्वागत किया है, कृपया आप मुझे बताओ कि राम कहाँ है। तो गुहा जो होते हैं वो अपने हृदय की भावना को छुपाना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि मैं मुझे भय लगता है कि आपके प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने के का उद्देश्य क्या है, कुछ बुरा उद्देश्य तो नहीं है। तो वास्तव में वो जानते हैं कि अगर सही में बुरा उद्देश्य है तो उनकी बुरी गति हो जाएगी कि राजा के सामने ऐसे कह रहे हैं, पर फिर भी वो संकोच जो होता है हृदय से बोल देते हैं। और वास्तव में भरत कहते हैं कि जो हम राम से मिलना चाहते हैं इसलिए कि राम को राजा वापस बना ले, और इसीलिए हम सारा राज्य की राज्याभिषेक की सामग्री साथ में लेके आए हैं। तो जब ये वचन सुनते हैं भरत के मुंह से तो गुहा की आंखों से आंसू आने लगते होते हैं कि हे भरत, तुम्हारा जैसे भाई इन तीनों लोगों में किसको मिल सकता है, कि सारे राज्य का ऐश्वर्य अपने आप से तुम्हारे पास आ गया है और तुम अपने भ्रातृ प्रेम के लिए तुम सारे ऐश्वर्य को त्यागने का तैयार हो, तय कि मैं मेरे सारी सामग्री है सैकड़ों जितने भी नाव मेरे पास है सब मैं तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा और तुम ये नदी को पार करके जा सकते हो, और फिर आज रात को आप मेरे साथ रहो यहाँ पे। तो वो रहते हैं और फिर वो उस दिन दिखाते हैं वहाँ पे कि राम यहीं पे आए थे और राम यहीं पे सोए थे, तो कहाँ सोए थे मुझे दिखाओ। तो दिखाते हैं कि यहाँ पे सोए थे उन्होंने, और फिर वो देखते हैं कि ऐसा ज़मीन पे सोए हुए थे, फिर वहाँ पे देखते हैं कि जो वो गुहा बताता है कि यहीं पे परशुराम लक्ष्मण सीता उन्होंने अपने बाल की जटा बना ली थी। तो जब ये सुनते हैं भरत तो वो मान लो कि दुख के सागर में डूबने लगते हैं। फिर वो कहते हैं गुहा को कि ये सब मेरे कारण हुआ है, तो आप मेरे लिए भी लेके आओ। तो वहाँ वहीं पे वो भरत राजा के वेश राजकुमार के वेश में आए होते हैं, पर वो वन का वास पहन लेते हैं, वो भी अपने बालों की जटा बना लेते हैं। और वो उसी तरह रात भर वो सो नहीं पाते, सोच रहे होते हैं कि कैसे प्रभु श्री राम चंद्र लक्ष्मण सीता कैसे इस ज़मीन पे सोए हो गए, सब मेरे कारण हुआ ये। फिर अगले दिन नाव से उछलते हैं, बाहर जाते हैं, नदी के पार जाते हैं और वहाँ पर भरद्वाज मुनि का आश्रम आता है। और सोचते हैं कि बड़े ऋषि है तो सारे सेना के साथ नहीं जाना चाहिए, तो मैं तो वो केवल वे और वशिष्ठ ऋषि दोनों साथ में जाके भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। तो भरद्वाज और वशिष्ठ आलिंगन करते हैं, फिर भरत जो है भरद्वाज मुनि को प्रणाम करते हैं। और फिर भरद्वाज मुनि कहते हैं भरत से, हे भरत, मैं आशा करता हूँ कि तुम राम का कुछ अमंगल करने के लिए बड़ी सेना लेके नहीं जा रहे हो। तो जब भरत ये सुनते हैं तो भरत गिड़गिड़ा के गिर जाते हैं भरद्वाज ऋषि के चरणों में, कहते हैं हे ऋषिवर्य, अगर आप भी मेरे बारे मेरे हृदय के बारे संदेश करोगे तो फिर मेरे लिए क्या आशा है। फिर वो फूट फूट के रोने लगते हैं और कहते हैं कि वास्तव में मेरा कोई सहभाग नहीं था इस षड्यंत्र में, मैं तो जा रहा हूँ राम को वापस लेकर राजा बनाने के लिए। तो भरत सोचते हैं कोई अगर ये सब मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं किस किस का जो स्पष्टीकरण करूँगा। तो भरद्वाज ऋषि भरत के इस भरद्वाज और भरत जो है भरत भरत को इस तरह से देखकर वो हंसने लगते हो, कहते हैं हे भरत, मैं तुम्हारे हृदय को जानता था, पर मैंने तुम्हें इसलिए ऐसा कहा क्योंकि ताकि तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प है वह और दृढ़ बन जाए, क्योंकि जब तुम राम से मिलोगे तो तुम्हें बहुत दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हारे दृढ़ संकल्प को और दृढ़ बनाने के लिए मैंने ऐसे कहा, पर मुझे तुम्हारे बारे में कोई संदेह नहीं है। तुम जो भगवान की सेवा के लिए त्याग करने का जो आदर्श है उसमें तुम एक सर्वोच्च उदाहरण हो। और फिर वे कहते हैं कि आपके सारे सैनिकों को आप ले आओ और मैं उनको, आप सब प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में जा रहे हैं तो मैं आपको आप सबके सैनिकों की सेवा करना चाहता हूँ, आपको रहने के लिए खाने के लिए देना चाहता हूँ। तो भरत कहते हैं ये तो एक कुटिया है, एक आश्रम है और मेरे साथ तो हजारों लोग हैं, आप कैसे यहाँ पे इन सब का अतिथि के रूप में सेवा कर सकते हो, आपने हमें आशीर्वाद दिया यही काफ़ी है, नहीं वो तुम लेके आ जाओ। तो तभी भरद्वाज ऋषि जब भरत जाते लाने को, भरद्वाज ऋषि दिव्य चिंतन करते हैं और वो इंद्रदेव को वहाँ पे बुलाते हैं। इंद्रदेव को कहते हैं कि यहाँ पे आप जो नंदन स्वर्ग के बगीचा है वो यहाँ पे आप पुनर्निर्मित कर दो, यहाँ पे निर्मित कर दो आप, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लिए खाने के लिए रहने के लिए सोने के लिए हर प्रकार की उत्कृष्ट योजना बना दो। तो भरत जब आते हैं देखते हैं तो वास्तव में सब परिवर्तित हो गया है, विस्मय पड़ जाते हैं। तो भरद्वाज ऋषि जो है वो उनके पास इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि अपनी दैवी शक्ति से बड़ा ऐश्वर्य वो प्राप्त प्रकट कर सकते थे, पर वो ऐश्वर्य प्रकट कर सकते थे पर वो खुद वो ऐश्वर्य में नहीं रह रहे थे, वो जंगल में रह रहे थे। हम देखते हैं कि वास्तव में जो शौभरी ऋषि होते हैं वो भी तपस्या करते हैं, बाद में जब उन वो माया के मोह में आते तभी वो ऐश्वर्य से बड़ा महल बना लेते हैं ताकि जो मानधाता है उनको इम्प्रेस कर सके, उनको प्रभावित कर सके और फिर उनकी पुत्रियों उनकी कन्याओं से विवाह कर सके। नवव्यस्कंद में कहानी आती है। पर यहाँ पे भरद्वाज ऋषि सोचते हैं कि ये सब भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं तो उनको उत्तम सुविधा देना ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए वे सब योजना बना देते हैं। हम श्री प्रभुपाद जी के जीवन में यही देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी जब सारे विश्व भर में प्रचार कर रहे थे, जो प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया हम जानते हैं 1965 में अमेरिका में गए, 66 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ उन्होंने स्थापित किया और उसके बाद में जो प्रचार करने लग गए तो अमेरिका में बहुत यश मिल गया, बहुत अनेक बड़े बड़े मंदिर थे। और फिर प्रभुपाद जी बड़े बड़े मंदिरों में रह सकते थे, पर वो दो तीन दिन के लिए जगह पर रहते थे, तुरंत दूसरी जगह जाते थे, तुरंत तीसरी जगह पर जाते थे। और हमेशा वो बहुत अच्छी सुविधा बनाने का प्रयास करते थे भगवान के गुणगान के लिए और भगवान के प्रचार के लिए। पर वे खासकर भारत में जब आके रह रहे थे तो वे वृंदावन में थे, मायापुर में थे, ओडिशा में भुवनेश्वर में थे, तो वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी सुविधा नहीं थी। कई बार जंगल के जैसी जगह थी, वहाँ पे प्रभुपाद जी रह रहे थे। और क्यों प्रभुपाद जी रह रहे थे? वो सोच रहे थे कि यहाँ पे भगवान की सेवा चालू करनी है। तो प्रभुपाद जी को जब न्यूयॉर्क में एक बहुत ही विशाल 11 मंजिल का मंदिर बन गया था, बहुत ही सुंदर मंदिर था, तो वो जब मंदिर बना तो प्रभुपाद जी के लिए एक बड़ा कमरा वहाँ पे भक्तों ने रखा था। और प्रभुपाद जी जब उन कमरे में गए, कमरा कितना सुंदर है, राधा मेरा राधा दामोदर मंदिर में जो कमरा है उसके जैसे ही है। अभी राधा दामोदर मंदिर जो वृंदावन में, वहाँ पर जो गए वो एक छोटा सा कमरा है, वो इतना सा कमरा है वो वृंदा, और ये जो बड़ा आलिशान कमरा था ये। और प्रभुपाद ने क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वो कमरा इतना छोटा सा, ये इतना बड़ा है, वो इतना सरल है, ये इतना ऐश्वर्यशाली है। पर प्रभुपाद जी क्या सोच रहे थे, वो कमरे का क्या कंस्ट्रक्शन वो नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कमरा एक सुविधा है भगवान की सेवा करने के लिए। सोचते कि वहाँ पे मैं वृंदावन में भगवान की सेवा कर रहा था, यहाँ पे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा ही चाहते हैं हमेशा। और फिर भरद्वाज ऋषि के अतिथि के स्वीकार करके फिर अगले दिन भरत चलते हैं आगे। वो भरद्वाज ऋषि को बताते हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र है पास में चित्रकूट है, वहाँ पे वो रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाओ, आप उनको ज़रूर वहाँ पे मिल सकते हो। तो फिर अभी जो भरत और प्रभु श्री रामचंद्र का जो मिलन है चित्रकूट में, उसके बारे में हम चर्चा अगले प्रवचन में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार श्लोक वापस बताएंगे फिर और आप विराम देंगे। अवनी तनया कमनीय करम, रजनी कर चारु मुखाम्बुरुहम, रजनी चर राज तमो मिहिरम, महनीयमहम रघुराममये, श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच।